आप सुन रहे हैं खानाबदोशी सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अजात यायावर के साथ। तब मैं कक्षा छठी में था और ये LKG UKG ये तो और ये किंडरगार्टन क्या बोलते हैं वो तो मुझे अब सब मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ होता है। मेरे टाइम में नहीं था वो सब। हमारे यहाँ तो बस कच्ची पहली पक्की पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बोर्ड की एग्जाम छोटी सी और छठी में मैं छठी में आया था तब। और मेरे ख्याल से 6-7 साल की उम्र में मैं छठी में आ गया था। आप हंसेंगे, छोटा था लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था, तो उम्र को थोड़ी बढ़ाई और कुछ क्लासेस जंप करवाई और मैं एक्चुअल जब 6-7 साल का था तो छठी में आ गया था। गांव का स्कूल था, गांव के पास में एक कस्बा था, वहाँ पांचवी तक गांव में स्कूल था जिसमें हम 4 बच्चे पढ़ते थे, फिर वहाँ से पैदल जाते थे 4 किलोमीटर दूर एक कस्बे में। तो छठवीं में पहली बार अंग्रेजी की वर्णमाला होती ना, उसका ए फॉर एप्पल, ये पहली बार छठवीं में देखा और साहब बड़ा डर लगता था अंग्रेजी से। 3 साल तक मैं थर्राता था अंग्रेजी से। मैं गणित में बहुत तेज था पढ़ने में और बाद में मालूम नहीं था कि आज जब जीवन में भटकेंगे आगे छोटे मोटे काम करेंगे तो इसी अंग्रेजी से पला पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, ऐसा लगता था छोड़ देंगे इसको। अब पहली बार देखा सर वो निबंध रटवा दिया करते थे, काऊ गाय पे निबंध लिखो तो ऐसे बोलते थे इट हैज 4 लेग्स, जबिनी इट हैज 4 लेग्स, काऊ इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हैज 2 हॉर्न्स 1 लॉन्ग बुशी टेल, इस तरह से। या फिर सर बोलते थे कि एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल मिडिल स्कूल फला फला, सर हियर आई एम सी आई क्या आई आज भी आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल फॉर टू, इस तरह से सारी वो मतलब एक रट्टा मारते थे कि भाई अंग्रेजी में 100 में से मिनिमम जैसे तैसे 60 नंबर लाने हैं, 60 नंबर पे 60% पे फर्स्ट क्लास होता था। उस जमाने में फर्स्ट क्लास भी बड़ी बात थी। तो साहब छठवीं में आया मैं और गणित में बहुत तेज था। सर हमारे या मैडम या जो दूसरे सर जब पढ़ाने आते थे उन्होंने मुझे कोई सम दिया नहीं, कोई सवाल दिया नहीं गणित का कि मैंने उसको हल किया नहीं। 2 महीने बाद एक मैडम हमें पढ़ाने आई, बड़ी प्यारी, आज भी याद करता हूँ तो बड़ी अच्छी कहानी याद लगती है, बड़ा अच्छा एहसास लगता है, बड़ी सुखद अनुभूति होती कि वो क्या था। मुझे नहीं मालूम क्या था, बस आपके सामने रख रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ, तो आप ही पता करें वो क्या था। शायद हर बच्चे में ऐसा होता होगा। वो भी नहीं है ये, आज मुझे समझ में आता जो एक नॉर्मल है ना इन्फेचुएशन अट्रैक्शन या वो अपने टीचर से, वो नहीं, कुछ एक 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 कुछ सुखद अनुभूति है। खैर तो वो पढ़ाने आई और मैं सबसे छोटा था पूरी क्लास में, उम्र में नहीं चेहरे मोहरे में भी, तो थोड़ा प्यार करती थी मुझे, बड़ा लाड़ प्यार कर लेती थी कि अरे ये बच्चा छोटा है। और पढ़ने उनने कोई मुझे गणित का कोई सवाल दिया नहीं कि मैं फट से कर देता था। तो पढ़ाते 1-2 महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरी जो टीचर थी, हम बहन जी बोलते थे उनको, सुबह हाजिरी होती थी तो नंबर 2 उपस्थित बहन जी, नंबर 3 उपस्थित बहन जी, ऐसा प्रेजेंट सर वगैरह नहीं था हमारे स्कूल में। तो एक उनसे एक वेवलेंथ मिल गई कि लंच टाइम में वो अक्सर लंच जो होता था, लंच का जो टाइम होता था उनका जो होता था, सुबह 7:30 का स्कूल होता था 12 बजे तक, तो बीच में एक लंच क्या मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम होता था वो करती नहीं थी अक्सर आधे घंटे का, तो वो मुझे बुला लेती थी और बैठ जाती थी, मैं भी उनके पास जाके बैठ जाता था और उस आधे घंटे में ढेरों बातें होती थी। हाँ मेरे पति वहाँ हैं, फिर मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ, जल्दी से नहा धो के खाना बनाती हूँ, पति का टिफिन तैयार करता हूँ, उनका बेटा एक था जो मेरे ही बराबर था, मेरी हम उम्र था, उसकी तैयारी करती हूँ और फिर मैं स्कूल आती हूँ। वो अपनी बातें मुझसे शेयर करती हैं। हाँ मैं भी एक बच्चा, सच में बच्चा था, मुझे नहीं अभी तो बहुत वो हो गया हूँ लेकिन ज़माने में कुछ एकदम भोला था मैं, और मतलब वो ऐसे कुछ घर के दादाजी के संस्कार थे कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पाप लगता है ना, किसी लड़की की तरफ नहीं देखना चाहिए, पराई लड़की की तरफ पाप लगता है, वो सारी चीज़ें थी। ब्यूटिफुल दोज वर द डे। तो वो अपनी चीज़ें मुझसे शेयर करती, उनका लड़का मेरे बराबर था, तो मैंने 3 साल वहाँ मैं स्कूल में पढ़ा, वहाँ से 8वीं तक, 6, 7, 8, 6, 7, 11th। तो थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि मैडम अगर कुछ भी, हमारी जो मैम थी, बहन जी जो थी, वो बहन जी हमारी कुछ भी अगर जैसे शर्ट खरीदी है तो 2 खरीदती, एक उनके बेटे के लिए, एक मेरे लिए, और मुझे देती बाकायदा। और धीरे धीरे वो मुझसे वो सारी चीज़ें शेयर करने लगी जैसे एक दोस्त, एक सखी अपनी दूसरी सखी से शेयर करती है, एज इफ मैं कोई बड़ा मच्योर उनकी कोई सखी हूँ जो, बिल्कुल सीरियसली वो सारी बातें मुझसे शेयर करती। और मैं भले मन से मुझसे पूछती तो मैं भी बता देता कि हाँ पिताजी ऐसा, माँ ये है, दादाजी ये है, वो सारी बातें हमारे बीच में होती रहती। धीरे धीरे ये एहसास हुआ साहब कि बीच में संडे आता, रविवार छुट्टी का दिन, सैटरडे वो जब जाती तो मैं बच्चा था, लेकिन अपने एहसास बता रहा हूँ, उन्होंने जाते जाते बताया कि उनको भी ऐसे लगता था। तो वो संडे बड़ा खलता था कि यार ये संडे बीच में आ गया, अब जो है बहन जी से मंडे मुलाकात होगी, मंडे ही मिल पाएंगे, मंडे ही वो टी टाइम में जो आधे घंटे के बीच में या जो ब्रेकफास्ट या जो टाइम है उसमें वो मिलेंगे तब बात करेंगे, वो भी ऐसे ही सोचती। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई उस समय कि आहा, आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार वो क्या था, हमारे बीच में कौन सा रिश्ता था। डेफिनेटली वो इन्फेचुएशन नहीं था मेरी तरफ से भी उनकी तरफ, वो शी वॉज वेरी मच्योर, लेकिन एक क्या चीज़ थी, क्या उन्होंने मुझ में देखा कि वो चीज़ें शेयर करने लगी, और मुझे उनमें क्या कि मुझे उनसे बात करने में मज़ा आता। एक अलग ही सपनों की दुनिया में मैं चला जाता उनसे बात करके, रात को कभी आके पढ़ के सोता तो मैम की वो बातें याद आती हमारी बहन जी की, तो बताती कि बेटा तूने जब शादी करेगा ना, तू हालांकि मैंने नहीं किया अभी तक, तो है ना सूरत मत देखना, सीरत देखना, रंग मत देखना, गुण देखना। ये बातें तब समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज लगता है कि वो क्यों कहती थी ऐसी, जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, सफल असफल वैवाहिक जीवन को देखता हूँ अपने नियर बाय, अपने करीबियों के, तो समझ में आती वो चीज़ें। खैर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पता है तुझे, मैं जो तेरे से सारी बात करती हूँ ना, ये अपने पति को सब बता देती हूँ मैं, कि एक बच्चा है और मुझे उससे, और मेरे पति को कुछ नहीं होता, वो हंसते हैं कि अरे वाह अच्छा है, तुम किया करो, इस बहाने तुम्हारा अच्छा मन बहलेगा, अच्छा लगेगा, तुम खुश तो होती हो। और फिर उन्होंने कहा कि मैं 8वीं तक वहाँ पढ़ा, फिर 9वीं में मैं एक बड़े शहर में मेरा दाखिला हो गया, क्योंकि 8वीं में मैंने अपने ज़िले में टॉप किया था, तो 9वीं में एक शहर के बड़े स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया। कभी कभी मैं मैम से दूर चला गया था, लेकिन आता मिलने, तो हम घंटों बैठे रहते बातें करते, पूछती वो कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी, मैं बोलता नहीं मैम, मैं नहीं समझ में आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है। और वो अपनी सारी पर्सनल चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता वो शेयर करती, मैं करता, बातें करते करते फिर मैंने उस शहर से हायर सेकेंडरी की और फिर एक अगले शहर में कॉलेज पढ़ने चला गया। मैडम रिटायर हो गई, एक बार उनसे पहले मिला, और एक लंबा अरसा गुजर गया, मैं कहीं यहाँ काम किया जैसा कि मैं हूँ, कहीं वहाँ काम किया, थोड़े दिन यहाँ किया, और इधर से उधर मेरी भटकन, मेरी आवारगी, मेरा घुमक्कड़पन, मेरा ये यायावरपन ये जारी रहा। तो मैडम से सालों हो गए मिले, मिल नहीं पाया, न कोई टेलीफोन था, न कोई मोबाइल था, न ही उनके पास कोई नंबर था या होगा भी, तो मैंने कभी पता नहीं था, लिया नहीं, लेकिन हुई नहीं मुलाकात, बरसों हो गए। मैं उसी स्कूल में एक बार गया तो हमारे सारे टीचर भी या तो रिटायर हो चुके थे या फिर भगवान को प्यारे हो चुके थे, कोई था नहीं, लेकिन हमारे उस स्कूल में जो 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 भृत्य थे, चपरासी नहीं बोलूँगा गंदा लगता बोलने में, भृत्य दादा थे, वो ज़रूर थे उस समय तक, एकदम बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो अपना मटका वटका पानी का भर के वहाँ बैठते थे, स्कूल में काम था उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि बहन जी, अरे बोले बेटा वो अच्छा हुआ यार तू आ गया, मैं पूछ रहा था लोगों से लेकिन कोई बता ही नहीं पा रहा था तू कहाँ है। बहन जी की तबीयत ठीक नहीं, उनको कैंसर हो गया है और वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तो वहाँ से खबर भिजवाई थी उन्होंने कि कभी वो लड़का आए तो मेरे पास भेजना उसको। यार मुझे ऐसा मतलब ये लगा कि बस अभी दौड़ के जाऊं और मैडम के पास जाके बैठूं, उनसे बात करूं, उनसे मिल लूं, माफ़ी मांगूं कि मैंने इतने दिन याद ही नहीं किया आपको, याद तो किया मतलब मैं मिलने नहीं आया। लेकिन मैं 2 दिन बाद गया, एक पुराने टीचर थे उन्हीं के ज़माने के, उनके घर पे गया जो पास में रहते थे, पास के शहर में, वहाँ से उनका पता लिया और मैडम के घर गया। उनके पति थे, बेटा भी उनका था जो मेरा मुझसे थोड़ा ही बड़ा, मेरी हम उम्र मैंने कहा ना लेकिन थोड़ा बड़ा। मालूम चला कि मैडम 10 दिन पहले ही गुजर गई हैं, एक मिनट के लिए मैं मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। एक बड़ा तगड़ा अपराध बोध कि इतना स्वार्थी हूँ यार, मैं मिला तक नहीं। उनके हस्बैंड ने कहा कि बेटा एक काम करो, नाश्ता कर लो। मैंने कहा नहीं सर, वो नहीं नहीं कर लो, कुछ बातें भी करनी तुमसे। मैं कहा यार क्या बात करनी है, मन में कहा। थोड़ी देर बैठे, चाय पानी हुआ, इसके बाद उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। बोले तुम्हारी मैडम ने मरने से पहले ही तुम्हारे नाम एक लिफाफा लिखा है और कहा कि ये उसके हाथ में देना। मैंने भी नहीं खोला। मैंने कहा आपने क्यों नहीं खोला सर? बोले नहीं नहीं खोला, तुम्हारे लिए था। मैं कहा मैं अभी खोल के पढ़ता। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं। नहीं मैंने कहा नहीं। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर मैंने कहा नहीं मेरी इच्छा है। मैंने लिफाफा फाड़ा और उसमें जो लिखा था वो मुझे आज भी याद है। आज भी कई बार मुझे वो लिखा हुआ याद आता है। वो चिट्ठी मैंने संभाल के रखी है मेरे घर की संदूक में, मेरी धरोहर है मेरे घर की संदूक, जिसमें मेरी ऐसी कुछ चिट्ठी, मेरे ऐसे कुछ कागज़, मेरे ऐसे कुछ संस्मरण, मेरी ऐसी कुछ चीज़ें जो किसी ने दे दी हुई रखी हैं बस, और मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो चिट्ठी वहाँ रखी, उसमें लिखा था कि बेटा ये जीवन बहुत सुंदर है, लोग इसमें सुंदरता क्यों नहीं देख पाते, और ये जीवन बहुत मासूम भी है, जैसे कि तुम्हारा मुझसे बात करना या मेरा तुमसे बात करना। काफ़ी याद किया तुम्हें लेकिन शायद मिल नहीं पाई, इसलिए ये चिट्ठी लिखकर अपने पति को दी, क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है, कैंसर नाम की बीमारी हो गई, जा रही हूँ। कभी पुनर्जन्म होता है तो तुम फिर वही से मेरे छोटे से शिष्य छात्र बन के आना और मैं तुम्हारी बहन जी टीचर बन के आऊँगी। बाकी तो ये दुनिया आनी और जानी है, खुश रहो, तुम्हारी बहन जी। ये चिट्ठी पढ़ के कांप गया साहब मैं। उनके पति के सामने उनका बेटा भी था, ये चिट्ठी पढ़ी मैंने। उनसे कहा कि ये चिट्ठी मैं रख लूँ, बहुत प्यारे इंसान हैं उनके पति, अभी भी हैं। कहा कि तुम्हारे लिए तो है बेटा, रखो। तो वो धरोहर, वो चिट्ठी नहीं, मेरे लिए एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा खजाना है। वो चिट्ठी आज भी मैंने सहेज कर अपनी संदूक में रखी लोहे की। चलिए फिर मिलते हैं।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।